एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
आज हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय को फिर से खंगालने जा रहे हैं जिसके बारे में हम सबने सुना तो है लेकिन शायद पूरी तरह समझा नहीं है। हम बात कर रहे हैं मंगोल साम्राज्य की।
और मंगोलों का नाम आते दिमाग में एक ही तस्वीर आती है ना?
हाँ बिल्कुल, घोड़ों पर सवार, हाथ में तलवार लिए बर्बर योद्धा जो शहर के शहर जलाकर राख कर देते थे।
विनाश और क्रूरता की एक छवि। लेकिन आज हमारे पास है मॉरिस रोसाबी की किताब द मंगोल्स, और ये किताब इस छवि को सीधे सीधे चुनौती देती है।
हाँ मतलब सवाल ये है कि क्या मंगोल सिर्फ विनाशक थे या फिर वे कुछ और भी थे? क्या कहानी इतनी मतलब सीधी सादी है?
यही इस किताब का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये उन कहानियों को गलत नहीं कहती पर ये जरूर बताती है कि वो अधूरी हैं।
बिल्कुल, ये हमें तस्वीर का दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी पहलू दिखाती है। मंगोल एक साम्राज्य निर्माता के तौर पर और शायद दुनिया को जोड़ने वाले।
तो आज की हमारी पड़ताल इसी विरोधाभास पर होगी। एक तरफ बेहिसाब तबाही और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया बनाने का दावा जिसने पूरब और पश्चिम को पहली बार असल में जोड़ा। चलिए इसी उलझी हुई कहानी की परतों को खोलते हैं।
और देखिए, इस विषय पर बात करने के लिए मॉरिस रोसाबी से बेहतर शायद ही कोई हो। वो सिर्फ एक इतिहासकार नहीं है बल्कि मंगोल और मध्य एशिया के इतिहास के सबसे बड़े विशेषज्ञों में से एक माने जाते हैं।
कई इतिहासकार मंगोलों पर लिखते हैं लेकिन रोसाबी इतने अलग क्यों माने जाते हैं? क्या ये सिर्फ इसलिए कि वो मंगोलियाई भाषा जानते हैं या उनके विश्लेषण में ही कोई बुनियादी फर्क है?
दोनों बातें हैं लेकिन उनकी भाषा की जानकारी ही उन्हें दूसरों से अलग करती है। आप सोचिए, ज्यादातर पश्चिमी इतिहासकारों ने मंगोलों का इतिहास उन लोगों के नजरिए से लिखा जिन्हें मंगोलों ने हराया था।
मतलब फारसी, चीनी या यूरोपीय?
हाँ, तो जाहिर है उनकी कहानियों में मंगोल हमेशा से ही विलेन के रूप में नजर आएंगे।
सही बात है, ये तो वही बात हुई कि कहानी हमेशा शिकारी लिखता है, शिकार नहीं।
बिल्कुल,
रोसाबी चीनी, मंगोलियाई और कई दूसरी भाषाएं जानते हैं। इससे वो उन मूल दस्तावेजों तक पहुंच पाते हैं जहां दूसरे नहीं पहुंच सकते। वो मंगोलों की अपनी लोक कथाओं को, उनकी मौखिक परंपराओं को और पुरातात्विक सबूतों को भी अपनी रिसर्च में शामिल करते हैं,
तो एक ज्यादा संतुलित तस्वीर मिलती है।
हाँ, एक तरफा कहानी के बजाय हमें यह समझ आता है कि मंगोल खुद को कैसे देखते थे, न कि सिर्फ दुनिया उन्हें कैसे देखती थी।
ठीक है, तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। इस किताब का मुख्य तर्क क्या है? अगर वो सिर्फ बर्बर नहीं थे तो फिर क्या थे?
देखिए, किताब की सबसे बड़ी बात यह है कि मंगोलों की असली ताकत उनकी क्रूरता में नहीं थी।
तो फिर किस में थी? उनकी अनुकूलन क्षमता में, मतलब उनकी अडैप्टेबिलिटी में। वे जिस भी नई जगह या संस्कृति से मिले उन्होंने उसे सिर्फ नष्ट नहीं किया बल्कि उसे सीखा। वो बहुत व्यवहारिक लोग थे।
एक मिनट, ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही है। हमने तो यही पढ़ा है कि उन्होंने बगदाद और समरकंद जैसे बड़े बड़े सांस्कृतिक केंद्रों को पूरी तरह तबाह कर दिया था।
हाँ,
तो फिर ये सीखने और अपनाने वाली बात कहाँ से आई?
ये एक बहुत जरूरी सवाल है और रोसाबी इस विनाश से इनकार नहीं करते लेकिन वो बताते हैं कि ये उनकी रणनीति का एक हिस्सा था, एक सोचा समझा हिस्सा।
रणनीति? कैसी रणनीति?
शुरुआती तबाही एक तरह का मनोवैज्ञानिक हथियार थी ताकि दूसरे शहर डर कर बिना लड़े ही हार मान ले। लेकिन एक बार जब वे किसी इलाके को जीत लेते थे तो उनका रवैया बदल जाता था।
अच्छा।
उन्होंने चीन में चीनी प्रशासकों को, फारस में फारसी अधिकारियों को ही काम पर रखा। उन्होंने वहां की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को, टैक्स सिस्टम को और तकनीकों को सीखा और अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल लिया।
मतलब उनका लक्ष्य सिर्फ लूटपाट करना नहीं था बल्कि एक स्थायी साम्राज्य बनाना था।
बिल्कुल, किताब का केंद्रीय विचार यही है कि उन्होंने सभ्यताओं को सिर्फ नष्ट नहीं किया बल्कि वे पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल बन गए। उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा एक साथ जुड़ा हुआ भूमि साम्राज्य बनाया और उस पर शासन करने के लिए उन्होंने हर उस चीज का इस्तेमाल किया जो काम की थी, चाहे वो कहीं से भी आई हो।
तो किताब ये तर्क देती है कि मंगोलों ने उस पैक्स मंगोलिका,
हाँ मंगोल शांति,
उस दौर को जन्म दिया जिसने एक तरह से आज की इस जुड़ी हुई दुनिया की नींव रखी। यहाँ से कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है।
तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। किताब के शुरुआती हिस्से मंगोलिया के कठोर वातावरण के बारे में बताते हैं। ये कोई हरा भरा आसान इलाका नहीं है।
हाँ, मैंने पढ़ा है, बहुत ही मुश्किल जगह है।
यहाँ की सर्दियाँ इतनी भयानक होती हैं कि तापमान -40-50 डिग्री तक चला जाता है और गर्मियां बहुत छोटी और सूखी होती है।
और ऐसे माहौल में रहने के लिए तो आपको बहुत सख्त होना पड़ेगा।
सिर्फ सख्त नहीं बल्कि बहुत कुशल भी। इसी माहौल ने मंगोलों को घुमंतू बनाया, क्योंकि उन्हें अपने जानवरों के लिए लगातार नए चरागाहों की तलाश रहती थी। इसी जीवन शैली ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन घुड़सवार और तीरंदाज बनाया।
तो जिसे हम पिछड़ापन समझते हैं,
वो असल में उस माहौल में जीने का एक बहुत ही विकसित और परिष्कृत तरीका था। उनका पूरा समाज, उनके नियम, सब कुछ इसी घुमंतू जीवन के इर्द गिर्द बना था।
और इसी माहौल से एक व्यक्ति उभरा, तेमुजिन, जिसे दुनिया चंगेज खान के नाम से जानती है।
हाँ, उसका बचपन बहुत मुश्किलों में बीता। छोटी उम्र में पिता की हत्या हो गई। उसके अपने कबीले ने उसे और उसके परिवार को छोड़ दिया। वो सचमुच शून्य से उठा था।
और शायद इन्हीं मुश्किलों ने उसे वो समझ दी जो किसी राजकुमार के पास नहीं हो सकती थी।
बिल्कुल, उसने बिखरे हुए आपस में लड़ने वाले कबीलों को एकजुट किया, और ये काम उसने सिर्फ तलवार के दम पर नहीं किया।
तो फिर कैसे किया? उसकी असली प्रतिभा किस चीज में थी?
संगठन बनाने में। उसने एक क्रांतिकारी काम किया। उसने पुरानी कबीलाई वफादारी को तोड़ा और एक ऐसी सेना बनाई जो पूरी तरह से योग्यता पर आधारित थी,
जन्म या खानदान पर नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका सेनापति कोई भी बन सकता था अगर वो काबिल है, भले ही वो किसी छोटे कबीले से हो या आपका पुराना दुश्मन रहा हो। उसने यस्सा नाम का एक कानून भी बनाया जो एक तरह का संविधान था, और ये कानून सब पर लागू होता था।
और ये सेना शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी, जिसे मंगोल वॉर मशीन भी कहते हैं।
हाँ, लेकिन किताब बताती है कि यह सिर्फ क्रूरता या संख्या की बात नहीं थी। उनकी रणनीति में कुछ और भी खास था। वे बहुत होशियार थे।
जैसे कि?
उनकी सेना की गति और समन्वय बेजोड़ था। लेकिन उससे भी बढ़कर उन्होंने अपने दुश्मनों से सीखा। जब वे चीन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चीनी लोग किलों को घेरने में माहिर हैं, तो उन्होंने चीनी इंजीनियरों को बंदी बनाया और उनसे वो तकनीक सीखी।
अच्छा, मतलब उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इस्तेमाल किया।
हाँ बिल्कुल, उन्होंने जासूसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया और मनोवैज्ञानिक युद्ध का भरपूर इस्तेमाल करते थे। किसी शहर को बुरी तरह तबाह करने की खबरें फैलाना उनकी एक सोची समझी रणनीति थी, ताकि डर का माहौल बने।
तो क्रूरता एक रणनीति थी, सिर्फ गुस्सा या नफरत नहीं, लेकिन जीत के बाद साम्राज्य चलाना, वो तो एक अलग चुनौती होती है।
और यहाँ उनका व्यवहारिक रवैया काम आया। उन्होंने हर जगह एक ही मंगोल सिस्टम थोपने की कोशिश नहीं की।
क्यों नहीं की?
क्योंकि उन्हें पता था कि एक घुमंतू समाज के नियम एक बसे हुए कृषि समाज पर लागू नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने स्थानीय प्रशासकों को ही काम पर रखा और पहले से चल रही व्यवस्थाओं को अपना लिया। उनका मकसद था स्थिरता और टैक्स।
और इतने बड़े साम्राज्य को जोड़ा कैसे? हजारों किलोमीटर तक फैले साम्राज्य को चलाना कोई मजाक तो है नहीं।
इसके लिए उन्होंने याम नाम का एक शानदार पोस्टल रिले सिस्टम बनाया।
याम, ये क्या था?
आप इसे उस जमाने का इंटरनेट समझ लीजिए।
इंटरनेट?
हाँ, हर 30-40 किलोमीटर पर एक रिले स्टेशन होता था जहाँ ताजे घोड़े और संदेशवाहक तैयार रहते थे। इस सिस्टम की वजह से संदेश, अधिकारी, व्यापारी हजारों मील का सफर कुछ ही दिनों में तय कर लेते थे।
कमाल है।
ये सिर्फ डाक व्यवस्था नहीं थी, ये साम्राज्य की नसें थीं जो दिमाग यानी राजधानी को शरीर के हर हिस्से से जोड़कर रखती थी।
और इसी याम सिस्टम ने उस पैक्स मंगोलिका यानी मंगोल शांति के दौर को संभव बनाया होगा।
बिल्कुल, लगभग 100 सालों तक मंगोलों के नियंत्रण में सिल्क रोड इतना सुरक्षित हो गया कि व्यापार आसमान छूने लगा। रौसाबी बताते हैं कि उस समय कहा जाता था कि एक अकेली महिला सोने से भरी थाली लेकर साम्राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक सुरक्षित जा सकती थी।
और इसी सुरक्षा की वजह से विचारों और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हुआ होगा।
हाँ, और ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। चीन से बारूद, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, कंपस, ये सब पश्चिम पहुंचे, जिसमें यूरोप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया।
और पश्चिम से पूर्व क्या आया?
फारस से खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के विचार पूर्व में यानी चीन तक आए। ये सिर्फ सामान का व्यापार नहीं था, ये ज्ञान का वैश्वीकरण था। मार्को पोलो जैसे यात्री इसी दौर में चीन तक पहुंच पाए।
लेकिन इसका एक सियाह पहलू भी जरूर रहा होगा, इतनी खुली आवाजाही के खतरे भी तो होते हैं।
और यह इसका सबसे भयानक पहलू था। इन्हीं खुले रास्तों से ब्लैक डेथ यानी प्लेग की बीमारी भी चूहों पर सवार होकर एशिया से यूरोप तक फैल गई। अनुमान है कि इसने यूरोप की एक तिहाई से ज्यादा आबादी को खत्म कर दिया। यह ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत ही खतरनाक और अनचाहा नतीजा था। यह हमें याद दिलाता है कि जब दुनिया जुड़ती है तो अच्छी चीजों के साथ साथ बुरी चीजें भी बहुत तेजी से फैलती हैं।
और अंत में इस विशाल साम्राज्य का क्या हुआ? ये बिखरा कैसे?
कोई एक कारण नहीं था। साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि उसे एक केंद्र से चलाना मुश्किल था। चंगेज खान के वंशजों में अंदरूनी लड़ाइयां होने लगीं और सबसे बड़ी बात, मंगोल शासक धीरे धीरे स्थानीय संस्कृतियों में घुल मिल गए।
मतलब?
चीन में वे चीनी बन गए, फारस में वे फारसी और मुसलमान बन गए, उनकी अपनी पहचान कमजोर पड़ गई और साम्राज्य अलग अलग खातों में टूट गया।
तो इस पूरी कहानी से कुछ बड़े संदेश क्या निकलते हैं? मेरे लिए पहला तो यही है, अनुकूलन की शक्ति। मंगोलों की सफलता का राज उनके सीखने और बदलने की क्षमता में था, न कि सिर्फ उनकी ताकत में।
बिल्कुल, यह आज भी उतना ही सच है। चाहे कोई कंपनी हो या कोई देश, जो बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को नहीं बदलता, वो पीछे रह जाता है।
और दूसरा बड़ा विषय है योग्यता को प्राथमिकता देना, यानी मेरिटोक्रेसी।
हाँ, इस पर थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। चंगेज खान का काबिलियत को खानदान से ऊपर रखना, ये उस जमाने में एक जमीन आसमान का फर्क था।
मतलब उस समय की दुनिया, चाहे वो यूरोप हो, भारत हो या चीन, पूरी तरह से जन्म और वंश पर आधारित थी।
बिल्कुल, राजा का बेटा ही राजा बनता था। चंगेज खान ने इस व्यवस्था को तोड़ दिया। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन कबीले के एक तीरंदाज को, जिसने उसे युद्ध में घायल कर दिया था, उसकी बहादुरी देखकर अपना सेनापति बना लिया।
ये एक क्रांतिकारी विचार था।
हाँ, इससे उसे एक ऐसी टीम मिली जो सिर्फ वफादार नहीं बल्कि बेहद असरदार भी थी।
और तीसरा विषय जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो है धार्मिक सहिष्णुता, लेकिन एक रणनीतिक नीति के तौर पर।
हाँ, ये कोई नैतिक या दार्शनिक फैसला नहीं था, ये एक बहुत ही व्यावहारिक फैसला था। मंगोलों का अपना धर्म प्रकृति की पूजा पर आधारित था, जिसे टेंग्रिज्म कहते हैं।
तो उन्हें दूसरों के धर्म से फर्क नहीं पड़ता था?
उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके साम्राज्य में कोई ईसाई है, मुसलमान है या बौद्ध है। जब तक कि वो मंगोल शासन को स्वीकार करता है और टैक्स देता है, उन्होंने समझा कि लोगों को उनके विश्वास के साथ जीने देना उन पर शासन करने का सबसे आसान और कारगर तरीका है।
तो ये एक तरह का स्मार्ट पावर का इस्तेमाल था।
बिल्कुल, सहिष्णुता सिर्फ एक नैतिक गुण नहीं बल्कि एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक उपकरण भी हो सकती है।
किताब में कुछ विचार ऐसे हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मुझे एक पंक्ति याद आ रही है जो आपने बताई थी।
हाँ, रोजाबी एक जगह कहते हैं, मंगोलों की तथाकथित बर्बरता असल में दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरणों में से एक के लिए एक परिष्कृत अनुकूलन थी।
ये एक वाक्य ही पूरी धारणा बदल देता है।
बिल्कुल, जिसे हम बर्बरता कह रहे हैं वो असल में उस क्रूर माहौल में जिंदा रहने का और फलने फूलने का एक बेहद कुशल तरीका था।
एक और विचार है जो मेरे दिमाग में अटक गया, मंगोल साम्राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि विजय नहीं बल्कि सिंथेसिस थी। मतलब सिंथेसिस?
इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ जीता नहीं बल्कि अलग अलग संस्कृतियों, विचारों, तकनीकों और लोगों को मिलाकर कुछ नया बनाया। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां अलग अलग दुनियाएं एक दूसरे से मिल सकती थीं। उनकी राजधानी काराकोरम में बौद्ध मंदिर, मस्जिदें और चर्च एक दूसरे के पास बने हुए थे,
जो उस समय के लिए एक अनोखी बात थी।
हाँ, उन्होंने एक तरह से ग्लोबल कल्चर की नींव रखी।
और अंत में रोसाबी का ये निष्कर्ष कि उन्होंने एक ऐसी विश्व व्यवस्था बनाई जिसने पूर्व और पश्चिम को उन तरीकों से जोड़ा जो पहले कभी हासिल नहीं हुए थे, ये उन्हें इतिहास में एक विध्वंसक के बजाय एक संयोजक के रूप में स्थापित करता है।
वे दुनिया के पहले ग्लोबलाइजर थे, भले ही उनका तरीका हिंसक था। उन्होंने अनजाने में ही सही दुनिया को छोटा कर दिया। परत है, ये सिर्फ सही व्यक्ति को चुनना नहीं है,
तो फिर
ये भी है कि आप अपने दुश्मनों की प्रतिभा को भी पहचानने और इस्तेमाल करने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। आज के कॉरपोरेट या राजनीतिक माहौल में ये बहुत मुश्किल है।
ये तो है, और ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए पैक्स मंगोलिका की केस स्टडी तो आज और भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है।
बिल्कुल, अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये दिखाता है कि कैसे जुड़ाव से व्यापार और तकनीक तो तेजी से फैलते हैं, लेकिन साथ ही वैश्विक संकट
जैसे कि महामारी,
हाँ महामारी या आर्थिक मंदी का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। कोविड-19 ने हमें यही सबक तो सिखाया है।
सही बात है, हम सब एक ही नाव में सवार हैं।
हाँ, और सिल्क रोड से लेकर आज के एयरलाइन रूट्स तक कहानी बदली नहीं है, सिर्फ रफ्तार बढ़ गई है।
और विविधता के प्रबंधन यानी डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के बारे में भी मंगोलों का दृष्टिकोण बहुत व्यवहारिक था। वे समझते थे कि एक विविध समूह पर शासन करने के लिए आपको मतभेदों का सम्मान करना होगा,
जब तक कि वे आपकी सत्ता को चुनौती ना दें।
हाँ, ये आज की मल्टीनेशनल कंपनियों और हमारे जैसे बहुसांस्कृतिक समाजों के लिए एक जरूरी सबक है।
मेरे लिए इस किताब की सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि मंगोल विनाशकारी सृजन की शक्ति थे, मतलब डिस्ट्रक्टिव क्रिएशन।
ये एक विरोधाभास है।
है, लेकिन सच है। शुरुआती हिंसा और विनाश ने एक ऐसे दौर को जन्म दिया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया और अभूतपूर्व रूप से जोड़ा। कभी कभी बड़े बदलाव के लिए पुरानी व्यवस्थाओं का टूटना जरूरी होता है।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें सभ्यता की अपनी तयशुदा परिभाषाओं पर सवाल उठाना चाहिए। ये किताब दिखाती है कि घुमंतू समाजों की अपनी जटिल और कुशल व्यवस्थाएं थीं। इतिहास अच्छे और बुरे लोगों की सीधी साधी कहानी नहीं है।
ये कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है।
हाँ, मंगोल हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन सच हमेशा बीच में कहीं होता है।
बिल्कुल सही कहा।
तो इस बातचीत को हम यहीं रोकते हैं, लेकिन हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। मंगोलों ने दिखाया कि कैसे एक बाहरी विघटनकारी शक्ति पुरानी स्थिर सभ्यताओं को हिलाकर एक नई ज्यादा जुड़ी हुई दुनिया बना सकती है। आज की हमारी दुनिया में वो मंगोल जैसी बाहरी विघटनकारी शक्ति क्या हो सकती है? क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जलवायु परिवर्तन या फिर कोई और वैश्विक आंदोलन? इस पर जरूर सोचिएगा।
मिलेंगे अगली अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।